कैफियत नंबर 16 यहाँ से शुरू होती है। किताब उनवान अल्लाह के सफीर। ये किताब नाबीना ख्वातीन हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शमसा गजाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ पेश कर रहे हैं। किताब अल्लाह के सफीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी जिस्मानी एतबार से नाजुक और कमजोर थे, कद दरमियाना था और रंग गंदुमी, सीना मुबारक कुशादा था और दाढ़ी लंबी और गुंजान, दोनों भवें बारीक थीं और आपस में मिली हुई थीं। आवाज़ पुरजलाल और बुलंद थी, जिस वक्त कलाम फरमाते तो पूरी मजलिस गूंजने लगती थी। लहजे की तासीर का यह आलम था कि जैसे ही आप गुफ्तगू शुरू करते या मजमे में कुछ इरशाद फरमाते, तमाम सुनने वाले दम बखुद रह जाते। हाजरी ने मजलिस की ये मजाल ना थी कि वो आपकी तकरीर के सिवा किसी और तरफ मुतवज्जो होते। यही हाल आपकी रोशन आंखों का था, कुदरत ने अजीब रोशनी और मकनातीसी कशिश अता की थी। किसी फर्द या मजमे को एक नजर देख लेते तो वो आपका मतीओ फरमा बरदार बन जाता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मिजाज अजहद लतीफ था और तबीयत इंतहाई नफासत पसंद, सफाई और खुशबू का बहुत एहतमाम फरमाया करती थी। आपके लिबास से आलिमाना शान जाहिर होती थी, मगर कपड़ा नहायत कीमती होता था। वाज़ह रहे कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के लिबास में रेशम शामिल नहीं होती थी, क्योंकि मजहब इस्लाम में एक मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल नाजायज है। बाज कम नजर इस बात पर इतराज कर सकते हैं कि एक दरवेश को कीमती पोशाक से क्या गर्ज। दरअसल ये इतराज कम इल्मी और किसी हद तक जहालत का नतीजा है। आमतौर पर यह बात मशहूर कर दी गई है कि दरवेश और फुकरा बुसीदा शिकस्ता और मामूली लिबास इस्तेमाल करते हैं और यही उनकी विलायत की शान है। बेशक हमें तारीख में ऐसे बुजुर्ग भी नजर आते हैं, मगर इसका ये मफहूम हरगिज नहीं कि कीमती पोशाक अहले मार्फत पर हराम है। उसूली तौर पर असराफ और बेजा नमूदो नमाइश हराम है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी नहायत कीमती लिबास इस्तेमाल फरमाते थे। एक बार एक मालदार शख्स हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ, मगर इसका जाहिरी हुलिया इस कदर खराब था कि देखने वाले इसे इंतहाई मुफलिस और नादार इंसान समझ रहे थे। हजरत अबू हनीफा ने भी उसे एक जरूरतमंद इंसान ही समझा। फिर जब मजलिस दर्द खत्म हो गई तो इमाम आजम ने अपने मुसल्ले का कोना हटाते हुए फरमाया, ए शख्स, इसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक रकम ले ले। हजरत अबू हनीफा का यही तरीका था कि वो अपने मुसल्ले के नीचे रकम रखते थे और तन्हाई में इसी तरह हाजतमंदों की जरूरतें पूरी फरमाया करते थे। इस शख्स ने नहायत आजाना लहजे में अर्ज किया, हजरत, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, मैं तो सिर्फ आपका वाज सुनने के लिए हाजिर हुआ था। हजरत इमाम अबू हनीफा का चेहरा मुबारक मुतगैर हो गया और आपने इंतहाई नाखुशगवार लहजे में फरमाया, ए शख्स, अमीर व कबीर होते हुए भी तूने मुफलिसों की शक्ल क्यों बनाई है, जिसे देखकर अल्लाह के बंदे धोखा खाते हैं। पहले अपना हुलिया दुरुस्त कर, फिर मेरी मजली से दर्स में आ। वो शख्स उठकर जाने लगा तो हजरत इमाम आजम ने फरमाया, अल्लाह अपनी नेमतों के इजहार को पसंद करता है। इसी तरह हजरत इमाम मालिक भी कीमती लिबास देवतन फरमाया करते थे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बुजुर्गों की इसी रिवायत पर अमल पैरा थे। बगदाद के मशहूर ताजिर शेख अबुल फजल बयान करते हैं, एक बार हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का खादिम मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे ऐसा कपड़ा दरकार है जिसकी एक गज की कीमत एक अशरफी के बराबर हो। शेख अबुल फजल ने हजरत गौसे आजम के खिदमतगार को मतलूबा कपड़ा फराहम करते हुए पूछा, तुम इस कदर कीमती कपड़ा किसके लिए खरीद रहे हो? कादिम ने हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया और कपड़ा लेकर चला गया। खादिम के जाने के बाद शेख अबुल फजल ने सोचा कि जब दरवेश इतना कीमती लिबास देवतन फरमाएंगे तो फिर खलीफा वक्त कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करेगा। फिर एक दिन शेख अबुल फजल हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दर्जगाह में हाजिर हुए। इस वक्त आप कोई शरई मसला बयान फरमा रहे थे। दर्स खत्म हुआ तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेख अबुल फजल की तरफ मुतवज्जा हुए। अबुल फजल, मुझे रब्बे जलील की इज्जत की कसम, जब तक मेरा माबूद खुद हुक्म नहीं देता मैं उस वक्त तक कोई कीमती कपड़ा नहीं पहनता। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद के ताजिर को मुखातिब करते हुए फरमाया, इस लिबास के मुतालिक भी जिसका कपड़ा तुमसे मंगाया गया था, मुझे ये हुक्म मिला था। तुझे मेरे हक की कसम, एक पहन ऐसा भी पहन जिसकी एक गज कपड़े की कीमत एक अशरफी के बराबर हो। ताजिर अबुल फजल ये सुनकर लरज गया और माफी मांगने लगा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, अहले जाहिर यही ख्याल करते हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, अबुल फजल जिसे तुम कीमती लिबास समझ रहे हो, ये लिबास नहीं मैयत का कफन है। जब कोई दरवेश आलम सुलूक में हजार बार मर चुकता है तो उसको एक कफन अता होता है। ये थी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कीमती लिबास की हकीकत। रिवायत है कि हजरत गौसे आजम हर रोज सुबह नया लिबास तब्दील फरमाते थे और पुराना लिबास किसी दरवेश को दे दिया करते थे। अक्सर बुजुर्गों का ख्याल है कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फुकरा और मसाकीन ही की खातिर रोजाना नया पैरहन इस्तेमाल फरमाते थे। इसी तरह हजरत शेख हर जुम्मे को नया जूता पहनते थे और पुराना जूता किसी दरवेश या फकीर को दे दिया करते थे। यह आपके जुदू सखा का एक मुनफरिद अंदाज था जिसे अहले दिल खूब समझते थे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अक्सर औकात खच्चर पर सवार होते थे। वैसे आपको ऊँट की सवारी भी पसंद थी। हजरत गौसे आजम की खुराक बिल्कुल सादा थी। आपके वास्ते अलहदा अनाज बोया जाता था जिसकी कीमत आप खुद अदा फरमाया करते थे। आपके अहबाब में से कुछ लोग इस काम पर मुकर्रर थे। एक शख्स हर साल आपके लिए बतौर खास अनाज बोया करता था, फिर दूसरा शख्स उसे पिसवाकर और रोजाना मगरिब से कबल रोटियां पकवाकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता था। खाने के वक्त जिस कदर गुरबा आपके पास मौजूद होते, इनमें बराबर से रोटियां तकसीम फरमा देते, जो कुछ बच रहता उसे खुद तनावल फरमा लेते। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खुराक बहुत कम थी। अक्सर दिनों में आप रोजा रखते, बसावकात करके हैवानात फरमाते, यानी गोश्त घी और दूध का इस्तेमाल छोड़ देते। कभी गोश्त बहुत शौक से खाते। गोश्त खाने के हवाले से आपकी हयात मुबारक का एक अजीब वाकया मशहूर है। इस वाकये को बड़े बड़े मशाइख ने 5 मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है। एक बार एक औरत अपने लड़के को लेकर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में आलिया में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, मेरा ये लड़का आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दरबरदार होती हूँ और इसे आपके गुलामी में पेश करती हूँ। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस लड़के को कबूल फरमा लिया। फिर कुछ दिन बाद जब वो औरत अपने बेटे से मिलने के लिए आई तो लड़के की जाहिरी हालत देखकर अफसरदा हो गई। मुसलसल रियाजत की वजह से लड़का कमजोर नजर आ रहा था और इसके चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी। माँ की ममता ने जोश मारा और वो बेटे से पूछने लगी, फरसन तुम्हें यहाँ खाने को क्या मिलता है? जौ की रोटी, कभी सब्जी के साथ और कभी नमक के पानी के साथ, लड़के ने जवाब देते हुए कहा। ये सूरत हाल देख कर माँ को शदीद अजियत पहुंची और फिर वो मदरसे से उठकर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में हाजिर हुई। इस वक्त हजरत शेख मुर्ग का गोश्त खा रहे थे और आपके सामने एक बर्तन में सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी। औरत अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और बेख्तियार वो लुटी, मैंने अपने जिगर गोशे को आपके गुलामी में इसलिए तो नहीं दिया था कि वो जौ की रोटियां खा खा कर नीम जां हो जाए। खातून, रियाजत का तो एक ही नतीजा बरामद होता है कि जिस्म कमजोर हो जाए और रूह ताकत हासिल कर ले। तुम्हारा बेटा भी इसी मरहले से गुजर रहा है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुशफ़िकाना लहजे में फरमाया। औरत सलूक की मनाजिल से वाकिफ नहीं थी, इसलिए हजरत शेख की बारगाह में गुस्ताखी की मुर्तकिब हो गई। आप खुद तो मुर्ग का गोश्त खा रहे हैं और मेरे बेटे के लिए सिर्फ जौ की बेमजा रोटियां, ये कहाँ का इंसाफ है? औरत का तर्ज गुफ्तगु देख कर खिदमतगार लरज उठे, मगर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पेशानी मुबारक पर हल्की सी शिकन तक नहीं उभरी। आपने किसी नागवारी का इजहार किए बगैर मुर्ग की हड्डियों पर हाथ रख दिया और बावाज़े बुलंद फरमाया, खड़ी हो जाओ इस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। जैसे ही सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की जबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, मुर्ग जिंदा होकर बोलने लगा। फिर आप ने इस औरत को मुखातिब करते हुए फरमाया, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाए तो उसे इख्तियार है जो चाहे सो खाए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इस करामत को बड़े बड़े मशाइख और सक्का रावियों ने बयान किया है। शेख अली बिन अबी नसर फरमाते हैं कि मैंने अपने ज़माने में हज़रत गौसे आज़म से बढ़कर किसी बुजुर्ग को साहिब करामत नहीं पाया। कोई भी शख्स जिस वक्त आपकी करामत को देखना चाहता देख लेता। करामत कभी आपसे जाहिर होती थी और कभी आप में जाहिर होती थी। शेख अबू उम्र उस्मान का बयान है कि हज़रत सैदना अब्दुल कादिर जिलानी की करामत सिल्क मर्दारीद यानी मोतियों की लड़ी की मानिंद थी। अगर कोई शख्स अपनी आंखें खुली रखता तो हर रोज हज़रत शेख की कई करामत देख लेता। शेखुल इस्लाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुल सलाम का कौल है कि जिस कदर तवातुर के साथ सैयदना मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की करामात बयान की गई हैं, किसी और वली की नहीं। अपनी मशहूर ज़माना किताब बस्तानुल आरफीन में इमाम नूरी ने भी यही फरमाया। नूरुद्दीन अबुल हसन ने अपनी तसनीफ बहजतुल असरार में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात पूरी तफसील के साथ बयान की हैं। बास लोगों ने बहजतुल इसरार पर यह इतराज़ किया है कि इसमें गलत रिवायत दर्ज की गई है और हज़रत शेख के रूहानी मुकाम को साबित करने के लिए मुबालगा आरई से काम लिया गया है। मुखालफीन के एतराज़ात का जवाब अल्लामा कातिब चिलपती ने इस तरह दिया, मैं कहता हूँ कि ऐसी मुबालगा आमेज बातें कौन सी हैं जो हज़रत सैदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब कर दी गई हैं। मैंने हर चंद जस्तजू की मगर मुझे कोई रिवायत ऐसी नहीं मिली जिसमें दूसरों ने बहजतुल इसरार के मुसनफ़ की मुताबियत ना की हो। बड़ी से बड़ी करामत जो हज़रत शेख की ज़ात मुबारक से मंसूब है वो ये है कि आपने बाज़ मुर्दा इंसानों को जिंदा कर दिया। मुझे अपनी हयात की कसम इस रिवायत को अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी ने नकल किया है और यही रिवायत शेख इब्ने रफाई से भी मनकूल है। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को दुनिया और आखिरत में जो तसर्रुफ अता फरमाया है इसे वो गबी जाहिल और हाजिर शख्स क्यों कर समझ सकता है जिसने अपनी तमाम उम्र किताबों के मजामीन समझने में ज़ाया की और तस्किया नफ्स की तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। वो जिंदगी भर किताबों की वर्कदानी पर कनात करता रहा मगर उसने ताला की बख्शिशता को समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसीलिए सैयदना शेख जुनेद बगदादी ने फरमाया है, हमारे तरीके की तस्दीक विलायत है। बेशक मुर्दों का जिंदा हो जाना इंसानी अक्ल से बईद है मगर कुदरत के दायरे इख्तियार से बाहर नहीं बल्कि खलाक आलम के नज़दीक ये एक अदना फेल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर ख़ास ये मौजा देकर दुनिया में भेजा गया, कुम बइज़्निल्लाह खड़ा हो जा खुदा के हुक्म से। ये वो मशहूर कलमा है जिसके ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मुर्दा इंसानों को ज़िंदा किया। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी यही फरमाया था कि खड़ी हो जाओ उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। हमारे सामने मुख्तलिफ ज़मानों में पेश आने वाले दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं मगर दोनों की असल एक है। एक अल्लाह के बरगजीदा रसूल का मोजज़ा है और दूसरा अल्लाह के बरगजीदा वली करामत। इस दलील को सुनकर बात कम नज़र कहेंगे कि हमने एक वली को रसूलों की सफ़ में खड़ा कर दिया है। हरगिज़ नहीं। मैं रसूल अव्वल व आखिर रसूल होता है। कोई वली कितना ही साहिब करामत क्यों ना हो वो रसूलों के मनसब जहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये भी अमर वाक़ है कि औलिया की शख्सियत में अम्बिया कराम ही की किरदार की झलक नज़र आती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की परस्तिश करते थे और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी इसी ज़ात वाहिद के नाम लेवा थे। अब अगर कादिर मतलक ने अपने ख़ास बंदे को अवामुन नास के सामने सुरखरू कर दिया तो लोगों को हैरत क्यों है। आज के इस साइंस ज़्यादा दुनिया में कभी कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। माहिर डॉक्टर एक शख्स की मौत का ऐलान कर देते हैं मगर 8-10 घंटे बाद जब इसी मुर्दा शख्स को कब्र में उतारा जाता है तो उसकी सांसें दोबारा बहाल हो जाती हैं। अब अगर कहने वाले ये कहें कि हमारी समझ में नहीं आता तो कोई और इसका क्या जवाब दे। औलियारा हस्त कुदरत अजला इलाह, तीर जुस्ताबाज गर्दांदज राह। यानी अल्लाह की तरफ से औलिया को यह कुदरत बख्शी गई है कि कमान से छूटे हुए तीर को मोड़कर वापस ला सकते हैं। मौलाना रूम के शेर में भी बुनियादी बात इसी कुदरत खुदावंदी का इजहार है, जिसके जेरे असर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और मुमकिन नामुमकिन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मुर्दा इंसान जिंदा हो जाते हैं और जिंदा लोग आन की आन में फना के घाट उतर जाते हैं। आलिया हकीकी सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी इसके कारिंदे हैं। वो जिससे चाहता है अपना काम ले लेता है, जिसे पसंद करता है अपना मुकर्रब बना लेता है, और जिसे नापसंद करता है उसे हशर तक के लिए रानदाए दरगाह कर देता है। एक मुकाम पर हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, उस पर नजर रखो जो तुम पर नजर रखता है, उसके सामने रहो जो तुम्हारे सामने रहता है, उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी बात मानो जो तुमको बुलाता है, उसे अपना हाथ दो जो तुम्हें गिरने से संभाल लेगा और जहल की तारीकियों से निकाल लेगा और हलाकतों से बचाएगा, नजासतें धोकर मैलों कुचैल से पाक करेगा, तुम्हें नफ्स से बदकार और रफीकाने गुमराह से निजात देगा, जो शयातीन ख्वाहिश और तुम्हारे जाहिल दोस्त हैं खुदा की राह के डाकू, और तुम्हें हर नफीस उम्दा और पसंदीदा चीज से महरूम रखने वाले। कब तक आदत, कब तक ख्वाहिश, कब तक रवूनत, कब तक दुनिया, कब तक आखिरत, कब तक माँ सिवाय हक, कहाँ चले तुम इस खुदा को छोड़कर जो हर चीज का पैदा करने वाला और बनाने वाला है, अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, दिलों की मोहब्बत, रूहों का इत्मीनान, ग्रानियों से सबक दोषी, बख्शिश व एहसान, इन सब का रुजू इसी की तरफ है और उसी की तरफ से इनका सुदूर है। ये है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नजरिया तौहीद, जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। एक और मौके पर हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, अगर हुदूद इलाही में से कोई हद टूटती हो तो समझ लो कि तुम फितने में पड़ गए हो और शैतान तुमसे खेल रहा है। फौरन शरीयत की तरफ रुजू करो, इसे मजबूत थाम लो, नफ्स की ख्वाहिशात को जवाब दो, इसलिए कि हर वो हकीकत जिसके शरीयत तायीद नहीं करती बातिल है। एक बार हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक अकीदतमंद हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज करने लगा, सैयदी मैंने एक शख्स को हवा में उड़ते हुए देखा है। हवा में तो परिंदे भी उड़ते हैं, हजरत गौसे आजम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बाज जादूगर भी ये शोभे दिखाते हैं, मगर इस शख्स ने जमीन पर उतर कर नमाज अदा की थी। अकीदतमंद ने अर्ज किया, नमाज का जिक्र आया तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हो गए। फिर आपने अपने अकीदतमंद को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए शख्स, क्या तुझे वो मुकाम याद है जहाँ इस मर्द खुदा ने नमाज अदा की थी? सैयदी, वो जगह तो मेरे जहन पर नक्श होकर रह गई है, अकीदतमंद ने पुरजोश लहजे में कहा। वो हवा में उड़ने वाले शख्स से बहुत ज्यादा मुतासर नजर आ रहा था। चलो हम भी इस मर्द खुदा से मुलाकात करते हैं। ये कहकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दरगाह से बाहर तशरीफ लाए और अपने खिदमतकारों के हमरा उस तरफ रवाना हुए। जब तवील सफर करके हजरत गौसे आजम वहां पहुंचे तो हवा में परवाज करने वाला शख्स मौजूद नहीं था। अकीदतमंद शर्मसार नजर आने लगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसे तसल्ली दी और फरमाया, मुसाफिर किसी एक जगह कब ठहरते हैं? चलो वो मुकाम ही देख लेते हैं जहाँ इस मर्द खुदा ने सजदा किया। अकीदतमंदों ने जगह की निशानदेही की। सहरा की रेत पर इंसानी हाथों और पैरों के निशानात साफ नजर आ रहे थे। हजरत गौसे आजम कुछ देर तक इन निशानात को बगौर देखते रहे, फिर अफसोदा लहजे में फरमाने लगे, अफसोस, मेरा कीमती वक्त इस शख्स को तलाश करने में बर्बाद हो गया जिसे इबादत का जाहिरी तरीका भी नहीं आता। जो बंदा अपने खुदा को सही अंदाज में सजदा ना कर सके, फिर वो अगर हवा में भी उड़े तो क्या कमाल है। ये उस जमाने का वाक़िया है जब इंसानी अकायद और अमाल कमजोर हो गए थे और तमाम लोग महयूरुल अकुल बातों को ईमान की रोशन अलामत समझने लगे थे। शायद इस राज को फाश करने के लिए हजरत गौसे आजम वहां तशरीफ ले गए थे। सेहत नमाज कमाल बंदगी है। हवा में उड़ना कोई कमाल नहीं। करामत तो एक खुशबू है, अगर कहीं गुलाब है तो महकेगा। करामत तो एक रोशनी है, अगर सूरज का वजूद है तो गहरे बादलों में भी महसूस किया जाएगा। एक नाबीना शख्स भी रात और दिन में तफरीक कर सकता है। करामत तो एक आग है, अगर अंगारा है तो दहकेगा। न महकता है चमकता है, ना दहकता है, तो फिर ये समझ लो कि राख है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी करामत यही है कि आप अपने अल्लाह पर गैर मुतजलजिल यकीन रखते थे। आपके खलवत और जलवत में किसी नाहक का गुजर मुमकिन नहीं था। आपके जाहिर और बातिन में यकसानियत थी। शरीयत ही आपका इल्म था और शरीयत ही आपका अमल। फिर अगर ऐसे मर्द मोमिन की दुआ से कोई मुर्दा शख्स जिंदा हो जाए और कमान से छूटा हुआ तीर वापस लौट आए तो अहले दुनिया को ताज्जुब क्यों है। कुरान हकीम में इरशाद हुआ है कि हम अपने बंदे के हाथ और जबान बन जाते हैं। एक मर्द मोमिन की यही शान और यही कमाल बंदगी है। अगर सैयदना मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी भी इसी मुकाम बंदगी पर फाइज थे, जहाँ खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हजरत गौस आजम की करामत का शुमार मुमकिन नहीं। फिर भी हम चंद ऐसी करामत का जिक्र करेंगे जिन्हें नहायत मोतबर और सक्का रावियों ने तहरीर तबातुर के साथ बयान किया है। नामवर बुजुर्ग हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने अपनी शोरे फाक किताब अवारुल मुआरिफ में तहरीर फरमाया है, एक शख्स ने हजरत आजम से पूछा, सैयदी आपने निकाह क्यों किया। जवाब में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, बेशक मैं निकाह करना नहीं चाहता था कि इससे मेरी औकात में कदूरत पैदा हो जाएगी, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि अब्दुल कादिर तुम निकाह कर लो। अल्लाह के यहाँ हर काम में एक वक्त मुकर्रर है। फिर जब ये वक्त आया तो अख्ताला ने मुझे चार अजवाज इनायत की, जिनमें से हर एक मुझसे कामिल मोहब्बत रखती है। हजरत गौसे आजम की बीवियाँ भी आप ही के रूमानी कमालात से फैजियाब थी। आपके साहबजादे हजरत शेख अब्दुल जब्बार अपनी वालदा से मुतालिक बयान फरमाते हैं कि जब भी मोहतरम किसी अंधेरे मकान में तशरीफ ले जाती थी, आपके साहबजादे हजरत शेख अब्दुल जब्बार अपनी वालदा से मुतालिक बयान करते हैं कि जब भी उम्मे मोहतरम किसी अंधेरे मकान में तशरीफ ले जाती थी तो वहां शम्मा की तरह रोशन हो जाती थी, वहां शम्मा की तरह रोशनी हो जाती थी। एक मौके पर हजरत बाबा मोहतरम भी वहां तशरीफ ले आए, जैसे ही आपकी नजर इस रोशनी पर पड़ी वो यक बयक गायब हो गई। यह शैतान की रोशनी थी, इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। हजरत बाबा मोहतरम ने फरमाया, अब मैं इस रोशनी को ईमान की रोशनी में तब्दील किए देता हूँ। इसके बाद उम्मे मोहतरम जब भी किसी तारीक मकान में जाती थी तो वो रोशनी चांद की रोशनी मालूम होती थी। शेख अबुल हसन अली कर्शी का बयान है कि एक बार मैं और शेख अली बिन अबी नसर हजरत गौसे आजम की खिदमत में हाजिर थे कि बगदाद का मशहूर ताजिर अबू गालिब फजलुल्ला हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, सैयदी दावत कबूल करना मसनून है, इसलिए आप मुझ गुनाहगार की भी दावत कबूल फरमाइए। हजरत गौसे आजम सर झुकाए कुछ देर सोचते रहे। अहले मजलिस को ख्याल गुजरा कि आप इनकार फरमा देंगे, क्योंकि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दौलतमंदों के मकान पर तशरीफ नहीं ले जाते थे और ना किसी अमीर व कबीर शख्स की दावत कबूल फरमाते थे। अबू गालिब फजलुल्लाह उम्मीद व बीम की हालत में बैठा रहा। आखिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद के ताजिर पर नजर करम की और उसकी दावत कबूल फरमाई। अबू गालिब कैफ व मसरत के आलम में वापस लौटा और उसने नहायत पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया। जब हजरत गौसे आजम अबू गालिब के मकान पर तशरीफ ले गए तो वहाँ पहले ही शहर की मौजूद हस्तियाँ मौजूद थीं और बगदाद के बड़े बड़े मशाइख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का इंतजार कर रहे थे। दस्तरखान बिछाया गया, अनवाओ इकसाम के लजीज खाने चुने गए। आखिर में अबू गालिब की दो मुलाजिम एक बहुत बड़ा मटका उठाकर लाए और उसे कमरे के गोशे में रख दिया। हाजरीन की नजरें सैयदना शेख अब्दुल कादिर के चेहरे मुबारक पर मरकूज थी, मगर आप सर झुकाए इस तकरार के आलम में तशरीफ फरमा थे। कुछ देर बाद हजरत गौसे आजम ने शेख अली को हुक्म दिया कि मटका उठाकर आपके पास लाया जाए। शेख अली और एक दूसरे खादिम ने वो मटका लाकर हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के सामने रख लिया। इसे खोल दो। हजरत गौसे आजम ने शेख अली को हुक्म दिया। शेख अली ने मटका खोल दिया। इसके अंदर एक जजामी, अपाहज और नाबीना लड़का था। अबू गालिब, तुमने इस बच्चे को मटके में क्यों कैद कर रखा है? हजरत गौसे आजम ने अपने मेजबान को मुखातिब करते हुए फरमाया, हुजूर, मेरा बच्चा जजाम के मर्ज में मुब्तिला है, अंधा और अपाहज है, इसे कहाँ ले जाऊं? अबू गालिब जार और कतार रो रहा था। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हुए और बीमार लड़के के सर पर हाथ रखते हुए फरमाया, बच्चे अल्लाह के हुक्म से बाहर आ जा और परवरदिगार की इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख। जैसे ही हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, अपाहज और जजामी लड़का उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें रोशन थी। फिर वो खुशी के आलम में चीखता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। हजरत गौस आजम की दुआ का असर देखकर हाजरीन महफिल दम बखुद थे और अबू गालिब के मकान में एक हलचल सी मची हुई थी। हर तरफ एक शोर सा बरपा था। मेजबान और मेहमानों की ऐसी बेखबरी के आलम में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खाना खाए बगैर वहां से चले आए। अब हम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उस करामत का जिक्र करेंगे जिसका रूहानी दुनिया में बहुत शोर है। रिवायत है कि एक बार दरिया दजला में पूरी बारात गर्क हो गई। ये सानिहा इस कदर अलमनाक था कि जिन घरों में कुछ देर पहले शादियाने बज रहे थे, देखते ही देखते मातम कदा बनकर रह गए। फिर जब मुतासरीन को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो गिरिया उजारी करते हुए हजरत गौस आजम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत शेख ने गमजदा लोगों को सबर की तलकीन फरमाई, मगर दुल्हन की माँ बेख्तियार पाए मुबारक से लिपट गई। आपकी दुआओं ने हजारों बिगड़ी तकदीरें बनाई हैं, फिर मुझ बदनसीब के लिए सिर्फ अल्फाज की भीख क्यों? मेरे दामन ने मुराद को भर दीजिए, वरना मैं इसी तरह आपके दर पर फरियाद करते करते मर जाऊंगी। अब्दुल कादिर किसी को क्या दे सकता है? वो तो खुद कादिर मतलब का मोहताज है। हजरत गौसे आजम ने एक बार फिर इस गमजदा माँ को तसल्ली दी, जिसकी चीखें सुनकर हाजरीन मजलिस भी अफसरदा नजर आने लगे थे। वो आपकी बहुत सुनता है, आप उससे मेरे दामाद और बेटी की जिंदगी मांग लीजिए। शिकस्ता दिल माँ किसी बच्चे की तरह सरे मजलिस मचल गई। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर आप इस गमजदा औरत और सोगवार खानदान के दूसरे अफराद के साथ दरिया के किनारे तशरीफ ले गए। ऐ अल्लाह, ये सब लोग जानते हैं कि मुझे तेरी जात पाक से निस्बत है, तो इसी निस्बत के सदक़े में अपने बंदों इसी निस्बत के सदक़े में अपने बंदों की मुश्किल आसान फरमा दे। ये कहकर हजरत गौसे आजम ने थोड़ा सा पानी अपने दस्ते मुबारक में लिया और फिर दरिया को मुखातिब करके फरमाया, ए दजला, खुदा के हुक्म से खुश्क हो जा और मुसाफिरों को सलामती से गुजरने के लिए जगह दे दे। हजरत गौसे आजम का यह फरमाना था कि दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और वो जगह खुश्क नजर आने लगी जहां बराती गर्क हुए थे। देखने वालों ने देखा कि पूरा इंसानी काफिला जिंदा व सलामत था। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये करामत इस कदर तवातुर के साथ बयान की गई है कि सदियां गुजर जाने के बावजूद बरे सगीर पाक व हिंद के गोशे गोशे में इसकी गूंज सुनाई देती है। बाज़ उलेमा ने इस करामत की तौजीह करते हुए लिखा है कि बारात से मुराद इस्लाम की ज़बूहाली थी। ऐश परस्त शहनशाहों और दुनियादार आलिमों ने इस्लामी आदाब व कानून को हिरस व हविस के दरिया में गर्क कर दिया था। हजरत सैयदना मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने इसी डूबी हुई बारात को निकाला और अपने अमल से साबित किया कि शरीयत किसे कहते हैं और दीन मुस्तफ़ा क्या है। दीन इस्लाम के लिए दर्दमंदी और जान सोजी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हयात मुबारक का नुमाया पहलू है। अल्लाह ने ऐसी दर्दमंदी और जान सोजी बहुत कम औलिया को बख्शी है। एक मौके पर हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दीवारें पैदर पैदर पै गिर रही हैं और इसकी बुनियादें बिखरी जाती हैं। ऐ बाशिंदगाने जमीन, आओ और जो गिर गया है उसे मजबूत कर दें और जो ढह गया है उसे दुरुस्त कर दें। ये चीज एक से पूरी नहीं होगी, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। ऐ सूरज, ऐ चांद और ऐ दिन, तुम सब आओ। इस्लाम की जबू हाली में खुद मुसलमानों का अपना हाथ था, मगर इसके साथ साथ दूसरी इस्लामी दुश्मन ताकतें भी हम वक्त साजिशों में मसरूफ रहती थी। यहूदी और ईसाई उलमा अपने मजाहिब की बरतरी ثابت کرنے کے لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے مناظرے کرتے، مگر ہر بار انہیں شکست و ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک بار حضرت غوث اعظم رسالت مآب کی سیرت پاک پر تقریر فرما رہے تھے کہ ایک عیسائی راہب مجلس و واز میں داخل ہوا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب غوث اعظم کی تقریر ختم ہوئی تو عیسائی راہب نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اسلام پر فضیلت حاصل ہے۔ کیسٹ نمبر 16 کا یہاں اختتام ہوتا ہے، بقیہ کتاب اب آپ کیسٹ نمبر 17 میں سنیے۔